رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. हमने अल्हम्दुलिल्लाह किताबुल इमारा तक कर लिया था और अब हम किताबु सईद व ज़बाही ये करेंगे इंशाल्लाह। शिकार के मसाइल और ज़बीहा के, जानवरों को ज़बह करने के। जी ये 15564 ये कोई नंबर है, एनी हाउ चलें। फरजाना चौधरी आप बताएंगी कि कुत्ते को किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, किन कामों में इस्तेमाल करना जायज है और उसके लिए कुत्ते को रखा जा सकता है।
जी दो वजहों से रखा जा सकता है उसको, एक तो ये कि खेती बाड़ी और जानवरों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, और दूसरा शिकार के लिए।
शाबाश, ठीक है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पहले चूंकि पढ़ा हुआ है ये बात कि कुत्ते को रखना जायज नहीं है, लेकिन दो चीजों के लिए जायज है। एक तो जब आपने खेती की हिफाजत करनी हो, या जैसे बकरियां वगैरह, भेड़ें वगैरह, तो वो जैसे शेपर्ड डॉग होता है उस तरह से उनके लिए रखा जा सकता है, चरवाहे रख सकते हैं जानवरों की हिफाजत करने के लिए या और जानवरों की हिफाजत के लिए। इसी तरह शिकार के लिए, अब इस जमाने में भी ऐसे कुत्ते शिकारी होते हैं, पहले जमाने में तो बहुत ये आम था कि शिकार किया जाता था कुत्तों के जरिए, तो ये भी जायज है अगर ऐसा कुत्ते के जरिए शिकार किया जाए। हुमा गनी आप बताएंगी कि कुत्ते के जरिए शिकार करने में क्या चीजें हैं जिनको सामने रखना चाहिए, जिनको जहन में रख के फिर ये शिकार करना जायज हो, शिकार खाना जायज होगा।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने कुत्ते को छोड़ना है और शरायत, और फिर दूसरा ये कुत्ता सुधाया हुआ हो, ट्रेन हो, और जो कुत्ते ने शिकार किया वो उसमें से खुद ना खाए, मतलब मालिक के लिए रोक के रखे।
ठीक है, यानी सुधाया हुआ कुत्ता जो होगा वो जाहिर है उसको इतना ऐसी ट्रेनिंग दी गई होगी कि वो रोक के रखेगा, बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर करके उसको छोड़ा जाए। और इससे बाज लोग कहते हैं कि कोई भी खाना जायज हो जाता है बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर कह के, हालांकि यहाँ पे देखें आप तो यानी शिकारी कुत्तों के लिए जो कहा गया है वो अलग चीज है, अभी तो वो ज़िबा भी नहीं हुआ, और वहां पे वो सोचते हैं कि रेस्टोरेंट में जाके बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के और खाना शुरू कर देंगे तो वो हलाल हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे कितनी सारी शरायत के साथ बात की गई है और उसके अंदर इसके साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं है कि हम ये कह दें कि वहां पे भी हम बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के खा सकते हैं, तो ये सही नहीं है। और अगर जो कुत्ता है उसने खुद खा लिया तो क्या है फिर, क्या ये खा सकते हैं या नहीं? हुमा
नहीं, अगर कुत्ते ने खुद उसमें से खा लिया तो फिर खाना जायज नहीं है, फिर शिकायत हलाल नहीं है, फिर हराम हो जाएगा।
है। अच्छा, अगर कुत्ते ने खुद खा लिया फिर नहीं जायज है। जाकिल्लाहु खैरन कसीरा। मरियम आप बताएंगी कि अगर कुत्ते के साथ और भी कुत्ते शामिल हो जाएं तो फिर क्या होगा?
जी अगर और कुत्ते शामिल हो जाएं तो फिर ये है कि आप उसको नहीं खा सकते, इसलिए क्योंकि पता नहीं है कि किसने किया है, हो सकता है कि किसी और ने किया और आपने उस पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा।
अच्छा, और अगर अगर वो जिंदा हो जानवर जब तक आप पहुंचे और कुत्ते शामिल थे लेकिन वो जिंदा हो जानवर,
जी फिर कोई, फिर ये है कि आप अपना खुद ज़बह कर लें अपने से, तो फिर खुद ज़बह कर लिया तो फिर हलाल है।
ठीक है, शाबाश, सही है। जी नफीसा आप बताएंगी कि अगर कोई तेज धार आला जैसे चीज उसकी तरफ मारी गई है लेकिन उससे वो मरा नहीं है, जख्मी हुआ है, तो क्या होगा, उसका खाना जायज है या नहीं? जी नफीसा।
जी सॉरी मैं बोल रही थी लेकिन वो म्यूट था। जी अगर कोई चीज आपने कहा कि अगर मारी जाए और वो जख्मी हो गया तो आप उसको ज़िबा कर लें और अगर खून निकल गया तो भी जायज है वो ना?
अगर मर गया है तो?
अगर मर गया है, अगर उसका खून निकला है तो फिर जायज है। और अगर खून नहीं निकला तो फिर जायज नहीं है ना,
तो जख्मी करता हुआ आगे चीज चली गई है जख्मी करते हुए और उस जख्म से वो मर गया है।
नहीं, अगर खून नहीं निकला तो फिर नहीं जायज ना, अगर वो जख्मी सिर्फ हुआ है और अगर अभी अगर वो मर गया तो फिर वो जायज नहीं है, लेकिन अगर खून निकला है तो फिर जायज है, और अगर वो अभी जिंदा है तो आप उसको जिबा कर लें तो फिर जायज है।
अगर वो जिंदा है तो तब आप उसको जिबा करके खा सकते हैं, लेकिन अगर जख्मी हुआ है और जख्म की वजह से मर गया है, ये कहने का ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो, कि अगर जख्म की वजह से वो मरा है, आपके पहुंचने तक मर गया और अभी आपके जिबा करने से पहले मर गया, तो जाहिर है जख्म की वजह से मरा है, फिर नहीं खा सकते। अच्छा, अभी किसी ने मुझे क्या एक बात शायद रह गई, चले मैं आप लोगों से ही पूछती हूँ तो पता चल जाएगा। अभी जी नरगे साहब बताएंगी कि शिकारी कुत्ते ने अगर शिकार किया और कुत्ते उसको मार देते हैं तो फिर क्या खा सकते हैं सुधाए हुए कुत्ते?
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर सुधाया वो कुत्ता उसको यानी के मार देता है कि दूसरे कुत्ते अगर उसको आके मार देते हैं तो फिर नहीं खा सकते हैं?
नहीं नहीं दूसरे कुत्तों की नहीं बात, सिर्फ शिकारी कुत्ता है
अगर है। तो फिर भी उसको यानी के उसने उसको पकड़ने की वजह से उसे उससे मर गया है तो फिर उसको उसका अगर खून निकल गया है तो खा सकते हैं?
जाहिर है वो देखें अगर शिकारी कुत्ते ने पकड़ा है मार दिया है वो जख्मी होने, जाहिर है उसके पकड़ने से ही खून निकल आएगा और उसने पकड़ा ही है तो उससे भी खून निकल सकता है, नहीं निकला या निकला है लेकिन वो मर गया तब भी आप उसको खा सकते हैं क्योंकि ये सुधाए हुए कुत्ते का मारा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लें। जज़ाकअल्लाह खैरन नरगिस, ये पॉइंट नोट कर लें। हाँ, अगर दूसरे कुत्ते साथ शामिल हुए और उन्होंने मतलब खाया उसके अंदर तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने लिए शिकार किया, तब नहीं आप खा सकते। ठीक है, अगर सिर्फ अकेला शिकारी कुत्ता आपका जो है उसने किया है, उसने पकड़ा है और मर गया है तब भी आप खा सकते हैं। ये दो पॉइंट डिफरेंट है, ठीक है, यानी फर्क आप दूसरे कुत्तों के मिलने और जो शिकारी कुत्ता अपना है जो सुधाया, शिकारी कुत्ता हम उसको कहते हैं जो सुधाया हुआ हो, और दूसरे कुत्तों से मतलब ये कहने का है, ये नहीं कि किसी और का कुत्ता ना साथ मिल जाए, मतलब कहने का ये जो सुधाया हुआ नहीं है, जो शिकार के लिए नहीं है। ऐसे नहीं कि मिसाल के तौर पर दो दोस्त गए, एक के कुत्ते ने मसला ने के शिकार किया, वो सुधाया हुआ था उसका जानवर, और मैं कहूँ कि नहीं आपके कुत्ते ने कर ले मेरे कुत्ते ने नहीं किया तो इसलिए जो है ना मैं नहीं खा सकता, ऐसी नहीं है बात। बात कहने का मकसद ये है कि दूसरे कुत्तों से मतलब ये जो अनट्रेन्ड है, ट्रेनिंग नहीं है उनके पास, ये मतलब है। हाँ, अगर वो भी उन्होंने पकड़ा हुआ है और वो जिंदा है तो फिर जिबा करके खा सकते हैं। अच्छा जी, जी नसरीन आप बताएंगी कि मुसलमान का जबीहा यानी मुसलमान ने जिबा किया है लेकिन वो बिस्मिल्लाह कहनी भूल गया, तो बताएं फिर हम खा सकते हैं वो या नहीं खा सकते?
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा एक सवाल भी है, वो ये है कि मुसलमान ने अगर जानबूझ के बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो फिर वो नहीं खाएंगे, अगर वो भूल गया है तो वो फिर खा सकते हैं? सवाल ये है कि अभी आप जो कह रही थी कुत्ते का, तो यहाँ ये हदीस नंबर 1255 में लिखा है अगर कुत्ता शिकार में से खुद भी खा ले तो इसमें ये अंदेशा है कि उसने शिकार खुद अपने लिए पकड़ा था।
जी बिल्कुल,
तो क्या फिर ये खा सकती?
जब आपके कुत्ते के साथ दूसरे कुत्ते मिल गए।
अच्छा, फिर हम अगर एक अकेला खा ले मतलब उसमें से कुछ हो तो फिर वो ले
लेते, कुत्ता वो नहीं खाता, अगर उससे मर गया है तो फिर भी खा सकते हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा, मर गया तो फिर नहीं खा सकते? जज़ाकअल्लाह।
अच्छा, ये यहाँ पे ये बात नोट करने की है कि बाज़ दफा हमारे मुल्कों में कोई भी पकड़ के मुर्गियों को जिबा करने लगता है, ना कुछ पता होता है उनको, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर क्या पता, बस वो मुसलमान है दैट्स इट, ऐसे ही जिबा करते चले जाते हैं। تو یہ نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے نہیں اللہ کا نام لینا چاہتے، مگر جیسے اتنی سینس ہی نہیں ہوتی یا یاد ہی نہیں ہوتا ان کو کبھی، یا کچھ ہے ان کا روز کا کام ہی ہے تو کرتے چلے جاتے ہیں، تو وہ اس کے اندر نہیں آتا. مگر جو جان بوجھ کے نام نہیں لیتا، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے نا کہ وہی انسان جان بوجھ کے نام نہیں لے گا جس کے ایمان میں کوئی خلل ہوگا. ادروائز ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان مسلمان بھی ہو اور وہ جان بوجھ کے کہتا میں اللہ کا نام نہیں لوں گا. کیا؟ اچھا جی ناظرین، آپ بتائیں گی کہ اہل کتاب کے برتنوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ان کے برتنوں میں سے یوز کیے جا سکتے ہیں برتن یا نہیں؟
جی، اہل کتاب کے برتنوں کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس چوائس ہے تو پھر ان کے برتن نہ یوز کریں، بٹ اگر کوئی چوائس ہی نہیں ہے تو پھر اس کو دھو کے میک شور کر لے کہ اس میں انہوں نے کچھ ایسی چیز نہ بنائی ہو، تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں مجبوری میں.
جی، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اوائڈ کرنا بہتر ہے، یعنی اگر انسان ایسے برتنوں کے علاوہ دوسرے برتن پاتا ہے تو وہ اس لیے کیونکہ اہل کتاب اپنے برتنوں میں کیا کیا پکاتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے. کیونکہ ایک دفعہ میرے پاس کسی مسلمان نے کوئی بڑا خوبصورت سے پیالے کے اندر کھانا بھیجا، تو میں نے کہا بڑا خوبصورت آپ کا یہ برتن جس میں آپ نے کھانا بھیجا مجھے، تو کہنے لگی کہ میں نے تو ایسے ہی وہ گراج سے لگی ہوئی تھی وہاں سے میں نے لے لیا، اور مطلب کوئی بھی بیچ رہے تھے. اب مجھے بہت سخت پریشانی ہوئی کیونکہ یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کن کا تھا، انہوں نے کیا ان کے اندر ڈالی ہوں چیزیں، اور ایک وہ ہو جاتی نا، تو اس وقت پھر یعنی یہ مسئلہ میرے سامنے آیا تھا کہ واقعی اہل کتاب کے برتن میں ہم کھا بھی سکتے ہیں یا نہیں. تو اگر اچھی طرح آپ نے مانج کے دھو کے پھر رکھا ہو تو پھر ہاں آپ کھا سکتے ہیں اس کے اندر، لیکن وہی بات ہے کہ یوں ہی ان کے برتن خریدنے نہیں چاہیے کہ یوزڈ ان کے برتن، کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ کیا ہے. اور ایک اگر مجبوری نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے ہمیں کہ ہم ایسے برتنوں کو خریدیں چاہے وہ کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو. کیا جی اور کون؟ آج بہت کم لوگ آئے ہیں. جی ناہید آنٹی، آپ بتائیں گی کہ اگر بندوق وغیرہ سے شکار کیا گیا ہو اور چلاتے وقت اللہ کا نام بھی پڑھ لیا گیا ہو تو پھر کیا وہ کھا سکتے ہیں؟
جی ہاں، وہ کھا سکتے ہیں. ایک منٹ، آپ سے سوال بھی پوچھا تھا، آپ نے بھی بتایا کہ نمبر فور میں اگر تیر سے زخمی کر کے مر گیا ہے اور پہنچنے سے پہلے مر گیا تو شکار نہیں کھا سکتے، اور میرے خیال سے انہوں نے کہا تھا کھا سکتے ہیں، لیکن کتا بھی تو زخمی کر کے مار دیتا ہے تو وہ کھا سکتے ہیں، پھر تیر کے زخمی کیوں نہیں کھا سکتے؟
نہیں، آپ نے کیا پوچھا، زخمی کر کے کیا؟
جیسا آپ نے ابھی بتایا تھا کہ اگر تیر سے زخمی کرا کوئی جانور، ٹھیک ہے، اور وہ مر گیا تو ہم نہیں کھا سکتے، آپ نے یہ کہا تھا ہم نہیں کھا سکتے، لیکن میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ جب کتے نے زخمی کیا اور وہ جانور مر گیا، بسم اللہ اللہ اکبر کے بعد آپ نے چھوڑا کتے کو، کتے سدھائے ہوئے، کتے نے مارا جانور، ٹھیک ہے، وہ مر گیا، تب تو ہم کھا سکتے، پھر تیر کے زخمی کرنے والے کتے کو کیوں نہیں کھا، تیر کے زخمی والے جانور کو کیوں نہیں کھا سکتے، جبکہ وہ بھی سیم تھنگ ہے.
جی ایک میں اس کا بات کا آپ کو جواب دے دوں، جزاک اللہ خیرن. جو یہاں پہ بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ اگر صرف زخم لگائے اور اس کے بعد وہ مر گیا اس زخم سے ذبح کرنے سے پہلے، تو اس وقت اس کو پھر آپ نہیں کھا سکتے، وہ مردار ہو گیا کیونکہ وہ اس زخم سے مرا ہے. اور ہم نے قرآن کریم میں پڑھا ہوا ہے سورہ مائدہ میں عالم آتا ہے کہ جب کوئی گر کے مر جائے یا چوٹ سے مر جائے یا اس سے مر جائے تو پھر وہ نہیں کھایا جا سکتا. کتے کا یہ ہے کہ کتے شکار کو اگر مار ڈالیں، یعنی وہ ایسا شکاری کتا ہے کہ اس نے شکار کیا اور وہ مر گیا، تب ہم اس کو کھا سکتے ہیں. وہ سدھایا ہوا جانور ہے، اس نے ہو سکتا ہے زخم سے نہ مرا ہو، یا اللہ عالم کیا اس کے اندر حکمت ہے، یہ تو آپ سر سے ہی پوچھ سکتے ہیں. میں نے اس کے اوپر اتنی سوچ بچار تو نہیں کی کہ کیوں ایسا ہے کہ کتے کا وہ ہے اور تیر کا نہیں ہے. غالباً یہی نظر آتا ہے کہ جو زخم کے ساتھ مرا ہے ڈیفینیٹلی اس کا جو موت ہے وہ کسی چوٹ یا اس کی وجہ سے آئی ہے، تو چوٹ کی وجہ سے جو مرنے والا ہوتا ہے اس کو ہم نہیں کھا سکتے، یہ ایک تو رول ہے ہی ہے. کتے کا سدھایا ہوا کتا جو ہوتا ہے، ظاہر اس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ ایسا زخم نہ لگائے ہو سکتا ہے، یا کیا اس کے اندر حکمت ہے واللہ عالم. है, तो ये आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या इसके अंदर हिकमत की बात है। मगर हाँ, ये बात आपने सही की है कि कुत्ता का शिकार अगर कुत्ते ने किया है, शिकारी कुत्ते ने, ट्रेंड ने, और वो मर भी गया है, तब भी आप उसको खा सकते हैं। अच्छा जी, अब इतने लोग नहीं आए तो मैं किससे पूछूं? देखें ना, अगर ज्यादा लोग नहीं आएंगे तो फिर कैसे हम ये अपना, हालांकि हमारा काफी दिन के बाद ही हो रहा है, पिछले हफ्ते भी नहीं हुआ ये हमारे रिव्यू सेशन।
अस्सलाम वालेकुम साहब, मैं भी हूं लाइन पे।
ठीक है, ठीक है जी। यासीन आंटी, आप बताएंगी कि दरिंदे जो हैं और पंजे वाले परिंदे जो हैं, उनके बारे में क्या है कि क्या उनका गोश्त खाया जा सकता है?
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आपकी तबीयत कैसी है?
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र
है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। जो दांत वाले और दरिंदे का गोश्त नहीं खा सकते, और हराम है।
ऐसे परिंदों में से कौन से जानवर?
परिंदों में जैसे जिनके नाखून होते ना, नाखून वाले जो होते हैं, उनके नहीं खा सकते। जो चीड़ और जो नहीं, जो गोश्त खोर परिंदे होते हैं उनका नहीं खा सकते। जो दाने वाने चुगते हैं वो वाले खा सकते हैं।
वो तो कभी कभी मुर्गियां भी वो कोई वर्म्स और इनको खा लेती हैं उठा के।
अगर मेरे ख्याल में उनके नाखून डिफरेंट होते हैं बनिस्बत, चोंच जैसे नहीं होते बनिस्बत जो वो चीर फाड़ के जानवर परिंदे खाते ना, उससे मुर्गी के नाखून डिफरेंट होते हैं, और जुड़ी हुई उंगलियां होती हैं उनकी, और उनकी खुली हुई होती है, जहां तक मुझे याद है, मैंने यही पढ़ा था।
जज़ाकअल्लाह खैरन। अच्छा, अगर हम इसको और प्रिसाइज कर लेना तो वो ज्यादा बात समझ में आएगी। और वो ये कि अगर हम इस तरह से कह दें कि वो परिंदे, सारे परिंदे देखें एक सी चीजें नहीं खाते हैं, हम सोचते हैं कि सारे परिंदे ही दाना दुनका चुगते हैं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि बास परिंदे ऐसे भी हैं जो बाकायदा शिकार करते हैं दूसरे जानवरों का। यानी जैसे आप ये बाज वगैरह को देखें, ये बाकायदा देखें कि छोटे छोटे चूजों को, खरगोशों को, कोई ऐसी चीजें होती हैं, इनको उठा के ले जाते हैं उचक के। मुर्गियां अपने बच्चों को बचाती है इनसे, तो वो आपने देखा भी होगा कैसे इनकी परवाज होती है, कैसे ये नीचे को आते हैं और फिर स्लाइड करके तेजी के साथ ऊपर ले जाते हैं। तो इस तरह के जानवर कह रही हैं, इस तरह के परिंदे जो हैं, क्योंकि परिंदों में हम सोचते हैं हम सारे बर्ड्स को ही खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम सारे बर्ड्स को नहीं खा सकते, हम सिर्फ उनको खा सकते हैं जो कि इस तरह से शिकार नहीं करते, जो पंजों के जरिए शिकार करते हैं। हम देखा पंजों में कैसे उठा के लेके जाते हैं, ये जो पंजों के जरिए शिकार करते हैं, चाहे चील है, चाहे बाज हैं, गिद्ध हैं, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं कि वो उनको हम नहीं खा सकते। देखें अल्लाह ताला की कितनी बड़ी हिकमत है इनके अंदर भी, कि किस तरह से इन जानवरों को हमें खाने से मना किया गया। इसी तरह दरिंदे जानवर, तो इंसान में भी दरिंदगीत ना आ जाए, ऐसे ही जानवर को हलाल किया जो बड़े मासूम से जानवर हैं। फिर भी हमारी आज लगता है कि गिजा के अंदर ना ऐसी, अल्लाह ताला माफ करे, अपने हमारे हाथों की कमाइयां, ये ऐसी चीजें ऐड कर दी गई हैं कि दरिंदगी बढ़ गई है। हम देखेंगे ऐसे दरिंदगी के वाकयात आपके अंदर, कि इंसान सोचता है ये इंसान नहीं है, ये तो कोई हैवान है, दरिंदा है। तो वो क्या वजह है? क्योंकि हमारे फूड के अंदर ऐसे एंजाइम्स, ऐसी चीजें शामिल कर दी गई हैं, उनको हमें ख्वाबो ख्याल भी नहीं होता कि इसके अंदर ये चीज शामिल है, इसके अंदर ये पड़ा हुआ है। हम मजे से खाते रहते हैं और वो पता नहीं होता कि इन चीजों में कितना कुछ उनसे ऐड किया गया है। इसी तरह बच्चे बाद दफा पूछते हैं क्या हम इसको, शेर को खा सकते हैं, चीते को खा सकते हैं, इनको खा सकते हैं? तो दरिंदे किस्म के जानवरों को नहीं खाया जा सकता जो इस तरह से हों। अच्छा जी, जी इरम, आप बताएंगी कि समुंदर का जानवर के बारे में क्या है? क्या समुंदर का हर जानवर खाया जा सकता है?
जी सर, उसका भी उसूल सर ने यही बताया था कि जो पानी, वो जो पानी के अंदर रहते हैं वो तो सब खा सकते हैं, लेकिन जो पानी से बाहर और अंदर आते रहते हैं, जैसे केचुआ है या मेंढक है, तो वो नहीं खाएंगे जो आते और जाते, जो पानी में मुस्तकिल रहते हैं, जो अगर वो बाहर भी आ जाए खुश्की में मरे में तो भी उसको खा सकते हैं, लेकिन जो बाहर अंदर करते हैं वो नहीं खा सकते।
अच्छा, तो अगर समुंदर ही कोई जानवर ऐसा जिसके दांत भी हैं, या जो जो मतलब ऐसे पंजे हैं, या जो ऐसी चीजें, मतलब समुंदर में सिर्फ मछलियां नहीं है ना, आप देखते हैं
जी 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 एग्जैक्टली
जानवर है, तो उनका, उनके बारे में क्या है?
नहीं, फिर वो नहीं खाएंगे सादा।
वो नहीं खाएंगे, इसलिए कि वो भी
पत्तियां जैसे जी कह रहे
हैं आ जाता है ना, तो इसलिए ये भी याद रखिए, क्योंकि कई कई हम सिर्फ मछलियों का सोचते हैं समंदर में, अब तो सुभान अल्लाह जब आप देखते हैं तो ऐसी ऐसी चीजें समंदर के अंदर, ऐसे ऐसे यानी जानवर समंदर के दिखाते हैं कि अकल भी दंग रह जाती है कि ये भी समंदर के अंदर रहते हैं, कोई घोड़े की किस्म का है, कोई और है, और कई ऐसे हैं जो कि बाहर भी आते हैं, जैसे सी लायन वगैरह जिसको कहते हैं, वो बाहर रहते हैं, अंदर भी जाते हैं, इस तरह करते हैं। तो ये नहीं कि सारे हराम है, मगर ये है कि हर एक का हम ये नहीं कह सकते कि जिबा किए बगैर ही खाया जा सकता है, और बाज हलाल भी अगर हैं तो उनको जिबा करने की जरूरत है। हाँ, जो जिबा नहीं करने की जरूरत, वो सिर्फ वो जानवर हैं जो पूरे तरह समंदर के अंदर ही रहते हैं, उनकी अगर समंदर से निकाला जाएगा तो वो मर जाएंगे, तो उनको सिर्फ उनमें से जो हलाल हैं, जो जायज हैं खाने, जो दरिंदगी की किस्म के नहीं है, उनको खा के और उनके लिए हमें जिबा करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा जी, तहसीन आपने कहा था कि आप आ गई हैं जी, आपका नंबर नहीं नजर आ रहा, ये 15662 ये किसका नंबर है जरा बताएं जी, 15566624।
आई डोंट नो सादा, मेरा नंबर।
वालेकुम सादा।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्ला। अच्छा आप हैं शहनाज?
नहीं, मैं रशीदा बोल रही हूं।
अच्छा रशीदा आप हैं। अच्छा जी, रशीदा आप बताएंगे कि पालतू गधों के गोश्त के बारे में क्या है?
पालतू गधों के बारे में ये कि बिल्कुल हराम है, पहले तो लोग खाते थे लेकिन जंगी खेबर के बाद बिल्कुल हराम कर दिया गया था, क्योंकि वो वजन उठाने वाला जानवर है
जी। तो क्या ये नजस जानवर है?
नजस तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि माल ठोने वाला और ताकि लोगों को फिर खत्म हो जाएंगे तो फिर लोग किस तरह काम करेंगे, उस तरह मुझे लगता है देखने में भी कुछ इस तरह नजस ही लगता है। नजस तो नहीं होता गधा, लेकिन कहते हैं कि सामान उठाता है लोगों के और काफी हेल्पफुल होता है।
नजस तो नहीं होता, मतलब देखने में बेचारा तो मतलब वो, क्योंकि शायद हमने एक बुद्धू और एक गाली के तौर पे गधा लिया है, इसलिए शायद आपको ऐसे लगता, अदरवाइज बड़े काम आता है इंसान के, सवारी के, माल बर्दारी के, और पहले जमाने में तो गाड़ियां वगैरह नहीं होती थी तो इनके ऊपर सवारी भी की जाती थी। हो सकता है इसमें हिकमत ये हो, वल्लाहु आलम, हिकमत का हम नहीं जानते कि क्या है, क्योंकि वरना तो और भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि उनके अंदर फिर इंसान सोचता है कि घोड़े तो वो भी तो एक सवारी के काम आते हैं, जिहाद के काम आते हैं, और ये तो, लेकिन उसकी इजाज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी भी थी, तो हम मतलब ये नहीं सिर्फ कहते हैं वल्लाहु आलम, हिकमतें अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम बस ये जानते हैं कि पालतू गधों का गोश्त जो है वो हराम है, और पहले हलाल होता था लेकिन उसके बाद हराम किया गया। आपने देखा ये क्वेश्चंस कितने ज्यादा होते हैं लोगों को, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खासतौर पे बच्चे हमसे बहुत सवाल करते हैं और कहते हैं कि ये हलाल है कि नहीं है, वो खा सकते हैं नहीं, चाहे खाना कुछ नहीं होता, लेकिन वो जस्ट इनक्विजिटिव इतने होते हैं, हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज हराम है और कौन सी हलाल है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जंगली गधे खा सकते हैं। जंगली गधे वो हैं जो कि जो जीब्रा की किस्म है ना, उनको आप कह सकते हैं वो जंगली गधे हैं, ठीक है, लेकिन अदरवाइज पालतू गधों को खैबर में हराम किया गया था। और यहाँ से हमें एक बात पता चलती है, जो खैबर में इसकी हुरमत का वाकया आया था, और कौन रह गया जिससे मैंने अभी तक नहीं सवाल किया? कोई और रह गया? शहनाज थी यहाँ पे? राफिया, राफिया का नंबर मुझे नहीं नजर आ रहा यहाँ पे जी, आप उनको अनम्यूट कर दीजिए
जी। उस्ताजा मैं आ गई
जी। जी राफिया आप बताएंगी कि जब खैबर में इनको हराम किया गया था जंगली गधे की कोर को, तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी मुसलमानों की?
जी उस वक्त खैबर में जब गधों का गोश्त लोगों ने जुबा किया था, उस वक्त भूख का बहुत बुरा आलम था, सख्त लोगों को भूख लग रही थी, तो जब उन लोगों ने वो खैबर पे कब्जा कर लिया तो बहुत सारा माल वगैरह मिल गया, तो तभी उन लोगों ने फिर ये गधों का गोश्त मतलब बनाया था।
بنایا تھا اور بنا کے ہنڈیوں میں جوش آنے لگا تھا, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ ہانڈیوں کو الٹ دو. آپ یہ دیکھیں کہ یہ مسلمانوں کا جزاک اللہ خیرن کتنا بڑا یہ ایک امتحان تھا کہ یعنی سبحان اللہ ایسے وقت میں جب ہانڈی میں گوشت پک رہا ہے, اس کی خوشبو ہے اور کھانے والے جو ہیں سخت بھوکے ہیں, اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے آزما لیا, اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا امتحان لے لیا کہ اب وہ کیا کرتے ہیں. ورنہ آپ سوچیں, تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی یہ حکم دے سکتا تھا, ابھی انہوں نے ذبح ہی نہ کی ہوتے تبھی حکم دے دیا جاتا, لیکن اللہ پاک نے اس وقت حکم دیا جس وقت وہ بنا کے بھی اس کو چڑھا چکے تھے ہنڈی. اب پتہ چلے گا کہ کون ہے جو کہے گا کہ میں ابھی تو کھا لوں, بعد میں نہیں کھاؤں گا کبھی, ابھی تو بھوک لگی ہوئی ہے, بات نہیں ابھی تو حکم آیا. تو انہوں نے سبحان اللہ ایک بات بھی اگلی نہیں کی اور ہنڈیاں الٹا دی. یہ کتنی زبردست بات ہے. نہ انہوں نے کوئی حکمتیں پوچھی ہماری طرح کہ بھائی اس میں کیا حکمت ہے, بھائی گھوڑے کا گوشت حلال اور گدے کا کیوں حرام ہو گیا, وہ بھی تو اس کے جیسا جانور ہے, یہ بھی کیا بات ہوئی, ابھی تو ہمیں بھوک لگی. کتنی باتیں ہم کرتے ہیں جب ہمارے سامنے کوئی حکم آ جاتا ہے. اب ایک انسان بھوک میں یعنی اتنا ایک طرح سے فاقے سے ہے, فاقوں پہ فاقے ہو رہے تھے اس وقت, اور اس وقت میں اتنا بڑا امتحان, ہمیں روزہ رکھنے کو کہہ دیا جاتا ہے جس کا ہمیں اتنا اجر کا پتہ ہے نا, تو تب بھی اتنی شکایت کرتے ہیں, ہائے گرمیوں کے روزے, ہائے ایسے, وائے اتنا, وائے وہ یہ کرتے ہیں اور اتنا کہتے ہیں کہ اتنے لمبے روزے ہو گئے, اتنی بھوک لگ جائے گی, کوئی پتہ نہیں پلز کھانے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھوک ہی نہ لگے, بھوک مر جائے, کوئی کچھ کرتے ہیں. ان لوگوں کا اندازہ کیجئے, تو اس سے پتہ چلتا ہے ان کے واقعی ایمان اس لائق تھے, ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور ان کو یہ سرٹیفکیٹ اپنی رضا کے دے دیے, واقعی وہ اس قابل تھے. جی اب گھوڑوں کے گوشت کے بارے میں ہمیں آگے پتہ چلتا ہے کہ گھوڑوں کے گوشت کے کھانے کی اجازت ہے. تو کیا پھر جی کہاں پہ ہیں, تحسین کا بھی نمبر مجھے نہیں نظر آ رہا میرے پاس.
استاذہ میرا ہے, انمیوٹ ہے میرا نا.
اچھا ٹھیک ہے. گو کون سا جانور ہوتا ہے اور کیا یہ کھانا حلال ہے؟
جی گو جو ہے وہ ایک لیزرڈ کی طرح دکھنے والا ایک جانور ہے اور یہ حلال ہے کھانا, اس پہ ممانعت نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھایا کرتے تھے کیونکہ وہ جہاں رہتے تھے اس جگہ اس گوشت کو مطلب وہ اتنا کامن نہیں تھا وہاں پہ, لیکن اس کو حرام نہیں کیا تھا.
حرام نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں کھایا ہے گو کو؟
نہیں کبھی نہیں کھایا. آپ کی دسترخوان پہ کھایا گیا ہے لیکن آپ نے کبھی نہیں کھایا
صلی اللہ علیہ وسلم نے.
اور میں نے پہلی بار سادہ سے سرچ کر کے جیسے دیکھا, جیسے سر نے بتایا تھا, کیونکہ مجھے ہمیشہ ہوتا تھا کہ یہ کیسا ہوگا لیزرڈ کی طرح, کیونکہ میں فلوریڈا میں رہی ہوں تو اتنی ہم نے دیکھی نا اس طرح کی چیزیں, تو واقعی میں وہ بالکل ایک بڑی سی لیزرڈ کی طرح دکھتا ہے, مطلب دیکھ کے شاید ہم بھی نہیں کھا سکے لیکن وہاں کے لوگوں کی خوراک تھی تو اس لیے وہ کھا سکتے ہیں, تو پھر مطلب اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اس کی.
جزاک اللہ خیرن. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں یہ نہ سمجھیے گا کہ حلال ہے تو اب ہمیں لازمی ہی کھانا ہے. اگر آپ کا دل کسی چیز سے کراہت کرتا ہے, نہیں دل چاہتا کھانے کو, ہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے حرام ہے, مگر ہم یہ کہیں گے کہ ہماری طبیعت کا میلان نہیں ہے اس طرف. آپ دیکھ لیں اونٹ کا گوشت میرا خیال ہم میں سے شاید کسی نے کبھی بھی نہ کھایا ہو, گھوڑے کا گوشت ڈیفینیٹلی نہیں کسی نے کھایا ہوگا. ہماری طرف ڈفرینٹ طرح سے کھایا جاتا ہے چیزیں, ان کے ڈیزرٹ کے اندر یہ چیز بہت کامنلی پائی جاتی تھی دوسری چیزوں کی نسبت, تو وہ وہاں پہ وہ اس کا شکار کر کے اس کو کھا لیتے تھے. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے ضروری کہ ہم سب کو کھانا لازمی ہے, کوئی چیزیں ہوتی ہیں. اب جیسے انہوں نے شرمپ کا ان کا پوچھا ہے تو علماء اس کو مکروہات میں سے کہتے ہیں مگر حرام نہیں ہے, مکروہ اس میں سے کہہ دیتے ہیں کہ اتنا زیادہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے, تو یہ چیز ہے اس کے اندر. اچھا جی جی شازیہ ناصر آپ بتائیں گی کہ ٹڈی کے بارے میں, ٹڈی کیا ہے, کون سی چیز کو کہتے ہیں اور یہ حلال ہے یا نہیں؟
جی السلام علیکم. یہ ٹڈیاں یہ صحرائی جانور ہے, ڈیزرٹ میں ہوتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال قرار دیا ہے. اس کو وہ لوگ جو صحرا میں رہتے ہیں اس کو ڈرائی کر کے کھاتے ہیں, جیسے مار کے, اور اس کو ذبح کرنا بھی ضروری نہیں کہ اسے ذبح ہی کیا جائے, یہ ویسے ہی حلال ہے, مطلب یہ مار کے اس کو پھر ڈرائی کرتے ہیں اس کو.
ذاک اللہ خیرن. جی ہمارے یہاں ہم سوچتے ہیں کہ یہ ٹڈی دل ایک جیسے جانور ہے, جیسے کہتے فصلوں کے اوپر بھی اٹیک کرتا ہے, اور اس کا کچھ نام ایل سے ہے, کچھ مجھے اب بھول گیا ہے انگلش میں کہتے ہیں, اس سے آپ اس کو میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی. مگر یہ ایک مطلب ایک جانور ایسا ہے بڑا, یعنی کیڑے کی طرح کا ہی جیسے بڑا سارا ہے, بہت باریک نہیں ہے کہ دیکھا ہی نہ جا سکے, تو اس کو کھانا جائز ہے. خرگوش کے بارے میں کیا ہے جی شہناز, آپ بتائیں گی؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام ورحمۃ.
جی خرگوش کے بارے میں یہی آتا ہے کہ خرگوش کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے اور اس کو کھایا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے عرب لوگ کافی خرگوش کا گوشت کھاتے بھی ہیں, بطخ کھاتے ہیں, خرگوش کھاتے ہیں, میرے خیال ہم نے نہیں کبھی کھایا ہوگا, مگر کافی یہ لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں, ان کے ہاں کھایا جاتا ہے. اب یہ بھی آپ ہی بتا دیں یہ کنکر مارنے کا کیا ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟
جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ کنکر نہ مارے جائیں شکار کرنے کے لیے, کیونکہ اس سے کوئی جانور شکار تو نہیں ہو سکتا, بس اتنا ہو سکتا ہے کہ کسی کی آنکھ پھوٹ جائے گی یا کسی کو چوٹ لگ جائے, چوٹ ہی لگ سکتی ہے, مطلب کوئی بڑا کوئی جانور وہ نہیں کیا جا سکتا, تو منع فرمایا آپ نے کنکر نہیں مارنے سے نا.
جی اور باندھ کے ان کو مارنا؟
جی باندھ کر مارنے کے لیے بھی بالکل منع فرمایا کہ کسی بھی جانور کو باندھ دیا جائے, پھر اس کے نشانہ لگایا جائے, کسی طریقے سے بھی اسے ٹارچر کیا جائے, یہ بھی بالکل حرام ہے.
شاباش. اچھا یہ اس ٹاپک کو میں خاص طور پہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں, اس لیے کہ بعض دفعہ بچے یا بعض دفعہ بڑے بھی نا سمجھ جو ہوتے ہیں وہ اس قسم کے کام کرتے ہیں کہ جانوروں کو ایسے مثلا بکری وغیرہ باندھ دی ہے اور اس کے اوپر نہ اپنے نشانیوں کی پریکٹس کر رہے ہیں, یا کوئی اور جانور باندھ دیا ہے, یا کوئی کسی نے ویڈیو بھیجی تھی کوئی چوہا تھا اس کے پیچھے اس کی دم کے پیچھے آگ لگا کے دکھا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں اور فن کر رہے ہیں اس سے, یا جیسے ایسے ہی فشنگ کا شوق ہے, کھانی وانی نہیں ہے بس فشنگ کی ایک ہابی ہے, وہ اس کو فشنگ کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد مچھلیاں نکال نکال کے ایسے ہی پھینکتے جا رہے ہیں, نہ کچھ کھانے کی ہے نہ کچھ ہے. لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ چاہے کوئی جانور ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے لیے حلال صرف تب کیا ہے کہ آپ نے اس کو کھانا ہو, ایسے نہیں ہے کہ اب یہ جانور ہمارے لیے حلال ہے تو چاہے مرغی ہے چاہے بکری, اب ہم اس کو جتنا مرضی چاہیے چڑیوں کے اوپر نشانے لیتے جانا غلیل سے لے کے کیا بیٹھے ہوئے اور ان کو مارتے چلے جانا, وہ غلیل پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے, اندر پتھر رکھ کے اور اس طرح سے اس کو چلاتے ہیں, تو وہ بچوں کی ہابی ہوتی ہے, اس سے مارنے لگ جاتے ہیں چڑیوں کو کسی جانور کو. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ یعنی انسان کی دل کی سختی کی علامت ہے. انسان جس کا دل نرم ہو اس کا دل جانور کے لیے بھی نرم ہوتا ہے, اس کے دل میں جانور کے لیے بھی رحم ہوتا ہے, تو اس لیے ایسے مشاغل سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ اچھی ہابیز نہیں, یہ اچھے طریقے نہیں ہیں, چاہے کسی جانور کو ہی کرنا ہو, انسانوں کو بھی نہیں تکلیف دینی, جانور کو بھی نہیں تکلیف دینی, یہ بھی ممانعت ہے. اور اس سے ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ شکار بھی نہ کیا جائے پتھروں سے کنکر مار مار کے, اب وہ دیکھیں اس سے کیسے کوئی جانور مرے گا تو نہیں, اس سے کیا ہوگا, اس کو کوئی نقصان پہنچے گا, اس کو تکلیف ہوگی, جانور کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے. دیکھیں جب ہم یہ احادیث پڑھتے ہیں کہ کتے کو پانی پلانے پہ بھی مغفرت ہوگی, جب ہم یہ احادیث پڑھتے ہیں کہ ایک بلی کو بھوکا رکھنے پہ بھی ایک عورت کے لیے جہنم ہو گئی, تو کیا اس سے پتہ نہیں چلتا کہ جانوروں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے؟ لیکن جس کے دل میں رحم ہوگا نا, اس کے دل میں ہر ایک کے لیے رحم ہوتا ہے, انسان ہو یا جانور, اور جو بے رحم ہوتا ہے پھر وہ سنگ دل ہو جاتا ہے ہر ایک کے لیے. اس لیے چاہے جانور کیوں نہ ہو, ہر تار کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ہے, یہ حدیث ہے, ہر تار کے ساتھ, تار مینس لیونگ تھنگ, ایوری لیونگ تھنگ کے ساتھ कोई भी आप अच्छाई करेंगे तो वो आपकी नेकी लिखी जाती है। याद रखें कि जो जानवर को हम ज़िबा करते हैं या खाने के लिए हम शिकार करते हैं या ये एक ज़्यादती नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए जायज़ किया गया, इसके ऊपर हमारे लिए कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह ने हमें इसकी इजाज़त दी है तब हम ये खा सकते हैं, अदरवाइज हम इस तरह से नहीं कर सकते कि ऐसे ही हम किसी को नुकसान देने लगे। वो हम नुकसान के लिए नहीं कर रहे होते, वो हम सिर्फ अपने खाने के लिए अल्लाह ताला ने इजाजत दी हुई तो हम कर रहे हैं, इसलिए हम इसके ऊपर अल्लाह का नाम लेके करते हैं कि अल्लाह ही के नाम से उसने हमें अल्हम्दुलिल्लाह की ये इजाजत दी। टेस्ट ऑन बाद हमारा, तो हम टेस्ट की बात कर ही लेते हैं कि टेस्ट हमारा कहाँ तक हुआ था। बाबुल इमारा किताबुल जिहाद तक हुआ था ना, तो किताबुल इमारा कर लें फिर। हाँ, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हमारा जमा हो जाएगा। असईद और अजवाई ये भी कर लेते हैं इसके साथ ही, क्या ख्याल है, क्योंकि ये भी छोटा सा ही है ना, या नहीं करें, इमारा ही कर लें फिर। चलें फिर ये किताबुल इमारा ही कर लेते हैं सिर्फ। कितने लोग कह रहे हैं कि दोनों साथ साथ कर लें, वन टाइप करें, और कितने लोग कह रहे हैं एक ही करें? दोनों ही कर लें। सबके मिक्स ही आ रहे हैं रिव्यूज। चले मेरे ख्याल में फिर दोनों ही कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है जस्ट इस किताबुल इमारा, ओनली वन करें। चले ठीक है फिर किताबुल इमारा ही कर लेते हैं। वैसे तो ये भी आसान ही है, लेकिन चले इसके अंदर शायद हो सकता है ये कुत्ते के शिकार और इसमें वो ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। चले फिर किताबुल इमारा ही कर लेते हैं। तो फिर हम ऐसा करते हैं आज है सिक्स, तो 20th को कर लें फिर इंशाल्लाह, इतनी दिन बाद। एक ही तो चैप्टर है, 27th को करें। 20th आप लोग लिखें, 20 को करें या 27th को? 20 लिख लें या 27? ट्वेंटी सेवन्थ को। अच्छा चलें, ज़्यादा लोग कह रहे हैं 27th को करें, तो इंशाल्लाह 27th को कर लेते हैं। आपके पास अच्छा खासा 3 weeks का टाइम है, फिर दोनों ही चैप्टर कर लेते तो अच्छा था, लेकिन चलें चलें ठीक है। किताबुल अदवाही कर लेते हैं, अभी तक क्लास तो नहीं शुरू हुई ना, अभी सर तो नहीं आए। किताबुल इमारा का टेस्ट इंशाल्लाह 27th को, नवंबर को, ठीक है। कुर्बानी के जो अहकाम हैं उनको कर लेते हैं। चलें अब फैसला हो गया, जो एक दफ़ा हो गया तो फिर अब मैं दोबारा से आप लोगों से ही पूछूंगी, क्योंकि और कोई नहीं आया हुआ। तहसीन आप बताएंगी कि कुर्बानी के दिन कौन कौन से हैं, किन किन दिनों में कुर्बानी की जा सकती है?
जी अस्सलाम जी उस्ताद, कुर्बानी के दिन जो एक ईद वाला दिन होता है उसके आगे के तीन और दिन, यानी कि चार दिन, यौम तशरीक का दिन और ईद वाला दिन।
अच्छा आप बोलेंगी डेट्स बोलेंगी?
10 तारीख को जो ईद का दिन है, 11, 12, और 13 यौम तशरीक का दिन।
यानी ये अच्छा हमारे यहाँ थोड़ा सा ये मशहूर है कि ईद वाला दिन और ईद के बाद 2 दिन ज्यादा हमारे यहाँ ये मशहूर है, ठीक है। और उसी के मुताबिक फिर हम चलते हैं कि ईद वाला दिन, अगला दिन और अगला दिन, और हम ये भूल जाते हैं कि 13 तारीख को भी कुर्बानी कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल है। तो इस तरह से नहीं है कि फिर आप सिर्फ 3 दिन हमने रखे हुए, बल्कि ये 4 दिन बन जाते हैं। अच्छा शहनाज शाह आप बताएंगी कि क्या 4th दिन कुर्बानी करने का कम सवाब और पहले दिन करने का ज्यादा सवाब है, ऐसा है?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। उस्ताजा जी नहीं, सब दिनों का सवाब एक जैसा मिलेगा
जी, सब दिनों। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह ये खेंचा तानी भी जो खत्म हो जाती है कि हर कोई चाहता है 10वें दिन ही कर लें, और उस दिन मतलब इतनी खेंचा तानी होती है कसाई की भी और उसकी भी, कि मतलब कोई चाहता नहीं है कि अगला दिन चढ़ जाए। तो जब पता चले कि देखिए हम ये वाले काम आते, हालांकि हर साल कुर्बानी करते हैं, लेकिन कितने लोगों को मालूम है? सबसे पहले तो यही नहीं बात मालूम कि 10, 11, 12, 13 में से किसी दिन भी कर सकते हैं, और अगर जिनको ये मालूम भी है तो बस 10, 11, 12 का पता है, और ये भी नहीं उनको पता कि किस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी शाहदी, आप बताएंगी कि कैसा जानवर देखा जाएगा, क्या शर्त है जानवर की कुर्बानी के लिए?
ये कुर्बानी का जानवर 2 साल का होना शर्त है उसके लिए।
अच्छा, 2 साल का होना जरूरी है। और दांत का क्या है?
और दांत ये है कि 2 साल के बाद ये जो दांत है तो ये गिर जाते हैं ना, तो उसको दुंदा कहते हैं, तो ये जब ये गिर जाए तो उसको दुंदा कहते हैं, चाहे बकरी हो या गाय हो जो भी हो, तो उसकी।
ठीक है, और अगर नए दांत अभी नहीं आए तो तब भी कर सकते हैं उसकी कुर्बानी या नहीं?
अगर नए दांत ना भी हो, हाँ तब भी कर सकते हैं।
नए दांत नहीं भी आए तब भी जज़ाकअल्लाह खैर। ये नहीं है, ये नहीं है कि वो दांत गिर गए हैं तो अब ये नहीं कर सकते, अब तो ये डिफेक्टिव हो गया, नहीं। नए दांत आए या नहीं आए, जो उसकी 2 साल की उम्र है, जब वो हो जाए तो तब उसका। अब ये पता नहीं है, वल्लाहु आलम, मुझे तो ये नहीं पता कि यहाँ पे जो जिनको हम कह देते हैं कि आप कर दें हमारे लिए जानवर ले आए, वो कसाई वगैरह को भी ये बातें मालूम है कि नहीं कुर्बानी के जानवर की, और वो जो मर्जी पकड़ के तो नहीं जानवर उसको ज़िबा कर देते। अच्छा, तो इसलिए हमें, अगर हमें पता हो तो हम उनको भी ये बात समझा सकते हैं। जी शबनम खान, आप बता सकती हैं कि जो कुर्बानी का वक्त है वो कब से शुरू होता है?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी, कुर्बानी का वक्त जो है वो ईद की नमाज के बाद से शुरू होता है, मतलब उससे पहले जो कुर्बानी होगी वो कुर्बानी नहीं कहलाएगी।
ये कुर्बानी नहीं कहलाएगी। और लेकिन मसलन मैंने पाकिस्तान में अगर कहा हुआ उनको कुर्बानी करने का, और एक दिन पहले मेरी यहाँ पे ईद हो जाती है, वहाँ पे एक दिन बाद ईद है, तो वो क्या मैं यहाँ पे नमाज पढ़ के उनको कॉल कर दूँ कि आप कर दें कुर्बानी?
वो फिर आपके मतलब हिसाब से जो है ना वो करेंगे, यहाँ के वक्त के हिसाब से। सॉरी, मैं इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी, ये वाला जो है ना।
अच्छा ठीक है, अब आप सुनिएगा इसको फिर। जी शाजिया नासिर, आप बताएंगी इसके बारे में?
अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें ये है कि हम जिस जगह हमने कही है कुर्बानी, उनके वेट करना है, जब उनकी ईद की नमाज हो जाएगी तब वो कुर्बानी करेंगे।
नहीं, जिस, याद रखें शबनम, कि जिस जगह पे आपने कुर्बानी करने को कहा है, जहाँ जानवर है वहाँ पे ईद की नमाज होगी तो फिर किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे उन्हें हम कह दें वहाँ पे करने को, उनकी 2 दिन बाद अगर ईद है तो 2 दिन बाद फिर वो ईद की नमाज पढ़ के अपने वहाँ के मुताबिक फिर कुर्बानी करेंगे। ये नहीं होगा कि जैसे यहाँ पे हैं उस मुताबिक हो। अच्छा, अब ये भी जी तहसीन, आप बताएंगी कि ये जो 2 साल का जानवर ज़िबा करने की बात है, तो क्या अगर 2 साल से पहले का कोई जानवर है, कम उम्र का कोई जानवर है, क्या अगर ना मिले 2 साल का तो उसको ज़िबा किया जा सकता है?
जो हदीस हमें यहाँ पे मिलते हैं सारा, वो तो उन उधर उस खास मौके पे बात की गई थी, लेकिन अगर 2 साल से कम उम्र का जानवर है तो उसको नहीं ज़िबा किया जा सकता।
जी, यानी ये खास उन सहाबी के लिए था, अगर बिल्कुल ही नहीं कोई अफोर्ड कर सकता, कोई मिल ही नहीं रहा जानवर जो 2 साल तक का हो, तब बाज कहते हैं कि किया जा सकता है, मगर वल्लाहु आलम, बाज का यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ उन सहाबी के लिए है। तो लेकिन ये राय भी मिलती है कि तब किया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई और दस्तियाब है ही नहीं। ठीक है, अच्छा जी, और किससे नहीं मैंने पूछा, जी मेरे ख्याल में सबसे ही पूछ लिया।
सदर सर आगे है आपको
पैंटो पे मैंने जाके लाओ खैरन कसीरा सुखानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।